الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق الله مولانا العظيم گزشتہ کل مجلس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ 10 تاریخ کو ہم کو کیا کیا اعمال کرنے ہیں, پھر سے میں 8 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے کام کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. 8 تاریخ کو یعنی جمعرات کا دن, اس دن ہم کو مینا کے اندر جانا ہے انشاءاللہ. فکس ٹائم انشاءاللہ العزیز بتا دیا جائے گا. کوشش یہی کریں گے کہ صبح ہمیں جانا ہو, لیکن اگر رات میں سیٹنگ ہو گیا تو رات میں چلے جائیں گے. کل مغرب کے بعد, عشاء کے بعد آپ لوگ احرام کی تیاری کر لیں, اور احرام کی تیاری اس طرح کریں گے, غسل یہیں ہوٹل میں روم پر کر لیوے, احرام باندھ لیوے, جس کو ہمت ہو وہ حرم شریف جاوے, جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے, احرام کی نیت, اے اللہ میں آپ کے لیے حج کر رہا ہوں, آپ میرے لیے قبول کر لیجئے اور آسان کر لیجئے. 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے, ہمارا احرام شروع ہو جائے گا. جو لوگ حرم شریف نہ جا سکے وہ یہیں روم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام کی نیت کر لیوے, انشاءاللہ ان کا احرام بھی شروع ہو جائے گا. احرام کی پابندیاں خوب دھیان میں رکھے, خوشبو والی چیز کوئی بھی ہم استعمال نہ کریں. احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ خوشبو لگائیے باڈی کے اوپر, یہ سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے پہلے, نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی ہے, خوشبو لگانی چاہیے. پھر ہم لوگوں کو جو بیگ دیا جا رہا ہے اس میں اپنی ضرورت کا سامان لے کر کے ہم لوگ انشاءاللہ مینا جانے کے لیے روانہ ہو گئے. جمعرات کا پورا دن مینا میں گزاریں گے, وقت وقت کے اوپر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, بیان ہوگا, دعا ہوگی, ذکر کریں گے. جمعہ کا دن عرفات کا دن ہے, اور عرفہ کا دن ہمارے حج میں سب سے قیمتی, سب سے اہم, امپورٹنٹ دن ہے. لہذا عرفات کے میدان میں صبح میں اچھی طرح آرام کر لیوے, باتھ روم وغیرہ جانا بھی فارغ ہو جاوے. زوال کا ٹائم تقریباً 12:25 پر ہوتا ہے, وہاں تک ہم لوگ پورے طور پر تیار ہو جاوے. زوال ہونے کے بعد ہم اپنے ٹینٹ کے اندر ظہر کی نماز پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ تسبیحات پڑھنا شروع کریں گے. عرفات میں کیا دعا اور ذکر کرنا ہے اس کے پمفلیٹ میں لایا تھا, लेकिन वो अब तक मेरे हाथ में पहुँचे नहीं हैं। अगर अल्लाह करे कल तक बैग आ गई तो वो पम्फलेट इंशाल्लाह आपको दे देंगे, वरना उसकी पीडीएफ फाइल है वो मैं ग्रुप में रखवा देता हूँ, तो आप मोबाइल के अंदर देख करके भी पढ़ सकेंगे। उसमें अरफात के अंदर जितनी तस्बीहात है, जो ज़िक्र है, वो सब अंदर लिखे हुए हैं। आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो करीब करीब 4 घंटे लग जावे, इतनी तस्बीहात है। तो जहर के बाद शुरू करेंगे कंटिन्यू, तो असर के टाइम तक में इंशाल्लाह तस्बीहात पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे, असर की नमाज़ के बाद हम मिलजुल करके इज्तिमाई दुआ करेंगे। जुमा का दिन ऐसे भी दुआ की कबूलियत का है, और वो भी अरफात का दिन है, तो हम लोग बहुत सारी खुश नसीबी और सआदत और बरकत हमको अल्लाह की तरफ से मिल रही है। अकेले अकेले भी हम लोग दुआ मांगे, टेंट के बाहर निकलकर धूप में खड़े होकर रो रो करके दुआ मांगे अल्लाह से, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरी उम्मत के लिए। जब सूरज डूब जाएगा तो फिर इत्मीनान से हम लोग मुज़दलिफ़ा जाएंगे। मुज़दलिफ़ा जाकर एक अज़ान एक इकामत होगी, पहले मगरिब की फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, फिर ईशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें, ईशा की सुन्नतें, वितर, नफिल वगैरह पढ़ेंगे। जिनको मुज़दलिफ़ा में कंकरी चुननी हो वहाँ चुन लेवे, किसी और जगह से चुननी हो और जगह से चुन लेवे, फिर आराम का तकाजा हो तो थोड़ी देर आराम करें। बाकी मुज़दलिफ़ा की रात में जितनी हो सकेंगे इतनी इबादत करेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर फजर का वक्त जब शुरू होगा तकरीबन 4:20-25 पर हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जिक्र दुआ के अंदर मशगूल हो जाएंगे। जब सूरज निकलने में 5 मिनट बाकी होगी तब इंशाल्लाह हम मुज़दलिफ़ा से निकल करके मीना जाएंगे। मीना अपने तंबू में जा कर के आराम करेंगे, और आराम करने के बाद तकरीबन जोहर के वक्त के बाद खाना वगैरह से फारिग होकर हम पूरे ग्रुप के साथ कंकरी मारने के लिए इंशाल्लाह जाएंगे। कंकरी मारने से फारिग होकर के वहाँ जहाँ से कंकरी मार के बाहर निकलेंगे वहीं से गाड़ी वगैरह मिलती है तो हम मक्कतुल मुकर्रमा यहाँ होटल पर आ जाएंगे और कुर्बानी का इंतज़ार करेंगे। कुर्बानी अगर अल्लाह ने करे डिले हुई, लेट हो गई, तो हरम शरीफ जाके तवाफ़ ज़ियारत कर लेवे, और फिर जैसे कुर्बानी हो जाए हम अपने सर के बाल साफ़ करवा देंगे, मुंडवा देंगे। हदीस पाक में आता है कि जो लोग बाल मुंडवाते हैं उनके लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा रहमत की दुआ मांगी है। इसीलिए उस्तुरा चला लेना ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआ लेने का बेहतरीन ज़रिया है। और औरतों के इतने बाल काट देवे उनकी चोटी में से, इस तरह औरतों का अहराम खुल जाएगा। गुसल करके सिए हुए कपड़े पहन करके तवाफ़ ज़ियारत, सफ़ा मरवा की सही, उसके बाद रात को हम देर सवेरे मीना चले जावे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमारा रविवार का दिन होगा और सोमवार का दिन होगा। ये दोनों दिनों के अंदर जोहर के जवाल के बाद से 3 शैतान को कंकरी मारनी है। लेकिन हम भीड़ देख करके वहाँ से कैसा वहाँ मजमा है, रश कैसा है, वो देख करके मशवरे से हम लोग कंकरी मारने के लिए पूरे ग्रुप के साथ हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मौका मिलेगा तो मगरिब ईशा एकात नमाज, 2 नमाज हम मस्जिदुल खीफ में पढ़ करके आएंगे अपने तंबू के ऊपर। उस मस्जिद के बारे में आता है कि वहाँ बहुत सारे नबियों की कब्र है, बहुत मुबारक मस्जिद है जो मीना के अंदर है। और उन दिनों के अंदर वो आबाद रहती है। रविवार और सोमवार के दिन तीनों शैतान को कंकरी मारना हर हाजी के लिए ज़रूरी है, और जिनको अल्लाह ताला हिम्मत देवे तो मंगलवार के दिन भी कंकरी मार लेवे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तका, कि जो देर से आया यानी 13 तारीख की भी कंकरी मार के आया तो ये बहुत बड़ी तकवा की परहेजगारी की बात है। तो शनिचर के दिन तो एक शैतान को कंकरी मारेंगे, रविवार और सोमवार के दिन तीनों शैतान को कंकरी मारेंगे, और मंगलवार के दिन भी तीनों शैतान को कंकरी मारनी है, और ये बहुत अच्छा काम है। यहाँ आकर के भी हमको होटल में रहना ही है, तो घर तो चले नहीं जाना है, तो वहाँ रह कर के फजीलत हासिल करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। समझो कि 80% मजमा मक्का आ जाएगा, 15-20% मजमा वहाँ पर रहेगा, बहुत मज़ा आएगा मीना के अंदर 13 तारीख को कंकरी मारने के लिए रहना, और उसकी नूरानियत और बरकत थी कुछ अजीब हुआ करती है। कंकरी मारते वक्त पर दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमन लिश्शैतान वरिजन लिर्रहमान, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो याद हो जाएगी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमन लिश्शैतान वरिजन लिर्रहमान, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमन लिश्शैतान वरिजन लिर्रहमान। अल्लाह के मुबारक नाम से मैं कंकरी मारता हूँ शैतान को गुस्सा करने के लिए और रहमान अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। एक एक कंकरी हम लोग करीब जाकर, बिल्कुल करीब जाकर के माननी है। अब तो बहुत ईजी हो गया है, पहले जितनी तकलीफ़ भी नहीं रही, और हम लोग इंशाल्लाह टाइम सेट करके जाएंगे तो बहुत आसानी से हमारी कंकरी हो जाएगी। पहले शैतान को कंकरी मारकर एक साइड पर जाकर किबले की तरफ खड़े होकर दुआ करेंगे, वो भी दुआ की कबूलियत की जगह है। दूसरे शैतान को कंकरी मारकर एक साइड पर चले जाएंगे, दुआ करेंगे, वो भी दुआ की कबूलियत की जगह है। तीसरे शैतान को कंकरी मारने के बाद दुआ करनी नहीं है, बल्कि अपने टेंट की तरफ हम लोग चल निकलेंगे। इस तरीके से हम लोगों की जो कंकरी वाला अमल जो है पूरा होगा। अब मीना के अंदर जो हम लोग रहेंगे तो जनरली हाजी लोग बातचीत में, महफिल लगाने में टाइम बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिम मालूमात, मीना के अय्याम अल्लाह के ज़िक्र के दिन है, उसमें अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। इस्लाम से पहले जाहिलियत में लोग जलसे करते थे, और अरब लोग शेर शायरी तकरीर की मजलिसें करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह तुम तुम्हारे बाप दादा की बातें बयान करते थे, अब अल्लाह का ज़िक्र करो और अल्लाह ताला को याद करो। तो मीना के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि एक टारगेट जैसा कि आपने नियत की है कि 300 मरतबा लब्बैक पढ़ने की, तो एक दूसरा टारगेट बना लो कि भाई 70,000 मरतबा हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेवे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम अपने लिए अल्लाह ताला के यहाँ बैंक में जमा करा देवे। 70,000 मरतबा जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, किसी को बख्श देता है, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए पढ़ करके अल्लाह की बैंक में जमा करा देवे तो इंशाल्लाह हमारी मगफिरत यकीनी हो जाएगी। इसीलिए टारगेट हम बना लेवे तो चलते फिरते उठते बैठते उस टारगेट को पूरा करने की फिक्र रहेगी, तो इंशाल्लाहुल अज़ीज़ हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैं यही आपको ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि टाइम बर्बाद करने से हमें अपने आप को बचाना है। जितना हो इतना ज़िक्र में, दुआ में, इबादत में हमारा टाइम लगे उसकी हम लोगों को कोशिश करनी है। हम लोग घबरा न जावे, हिम्मत से काम लेवे। और अभी गर्मी बहुत है, ठंडा पीने का दिल बहुत चाहता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर लेवे। इसलिए कि गर्मी के अंदर ठंडा पिएंगे, फिर बाहर गर्मी है, तो अल्लाह हिफाजत में रखे बुखार, सर्दी, खांसी, ऐसी सब तकलीफ़ें खड़े होने का डर लगा रहता है। इसीलिए थोड़ा अपनी तबीयत पर कंट्रोल कर लेवे। और सादा पानी है, कम ठंडा है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अंदर इंशाल्लाह हमारी सेहत और तंदुरुस्ती रहेगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज के अंदर कोई भी गंदी बात नहीं करनी, यानी औरतों की लाइन की, शोहर बीवी की जो प्राइवेट बातें होती है, ऐसी कोई बात अहराम में हम लोग न करें। लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल न करें, गुनाह का काम भी न करें। ज़ुबान को कंट्रोल में रखें और आँख को भी कंट्रोल में रखें। ज़ुबान और आँख को कंट्रोल में रखेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे हज को मबरूर और मकबूल बना देंगे। और जो है सब साथ में रहने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह एक दूसरे की खिदमत भी कर सके, एक दूसरे को मदद भी कर सके। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सब्र शुक्र से काम लेवे, लड़ाई झगड़ा न करे, ज़बान को काबू में रखे। अल्लाह सुबहानहु व ताला हमारे लिए हज के तमाम अरकान को आसान फरमाए। ये सोचो कि कितनी मुबारक जगह के ऊपर हम लोग हैं, कितनी बरकत वाली ये जगह हैं। तकरीबन अल्लाह के तमाम नबी यहाँ हज करने के लिए आए, उनके मुबारक कदम इस सरज़मीन पर हुए। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पैदा हुए, आपकी पैदाइश की जगह है। 53 साल हुजूर की ज़िंदगी के यहाँ गुजरे, 53 साल। मरवा पहाड़ से जो गेट बाहर निकलता है, उस तरफ आप बाहर निकलेंगे तो सहन है बहुत बड़ा, उसके अंदर एक लाइब्रेरी है सहन में। वो लाइब्रेरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की जगह है, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान था। वो साइट पूरा कुरैश का महल्ला था, उस साइट में कुरैश ख़ानदान रहता था। और वहीं पर 53 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रे हैं। तो ये पूरी बरकत वाली जगह है, रहमत वाली जगह है। तो इस जगह की इज़्ज़त, इकराम, मोहब्बत हमारे दिल के अंदर हो। और जितना इज़्ज़त और इकराम से हम लोग यहाँ रहेंगे, इतनी ज़्यादा बरकत अल्लाह ताला हम सबको अता करेंगे। ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب। ये अल्लाह के दीन की बड़ी बड़ी निशानी है, सफ़ा है, मरवा है, काबा है, मीना है, अरफात है, मुजदलिफा है, ये सब दीन की बड़ी बड़ी निशानी है। ये जो भी आदमी दिल से उसका रिस्पेक्ट करेगा, अदब करेगा, इकराम करेगा, तो अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजेंगे, बहुत रहमत से अल्लाह ताला उसको मालामाल करेंगे। अल्लाह हम सब के लिए अपने करम से हज को आसान फरमाए, हज के आमाल को आसान फरमाए। हम साथ में ही है तो कोई भी बात हो आप बेझिझक पूछ लिया करो, पूछ के करो तो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। गलती और जिनायतों से इंशाल्लाहुल अज़ीज़ हिफाजत रहेगी और हमारा हज इंशाल्लाह सुन्नत तरीके के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला हज के तमाम अरकान और आमाल को हम सब के लिए सुन्नत तरीके से करना आसान फरमाए और हम सब के हज को अल्लाह मकबूल मबरूर बना देवे। इंशाल्लाह मीना, अरफात के अंदर, मुजदलिफा के अंदर भी जो ज़रूरी बातें हैं मैं वक्त वक्त पर आपको बयान करूँगा, वहाँ इंशाल्लाह आपको बतलाता भी रहूँगा। और वहाँ भी इंशाल्लाह अच्छे कामों में हमारा वक्त गुजरेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए रहमत बरकत मुकद्दर फरमाए। बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत मुबारक दिन आ रहे हैं, बड़ी रहमत के दिन आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको उसकी सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। वसलामुन अलल मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा कल ईशा के बाद जिनको भी एहराम बंधवाना हो तो इंशाल्लाह मैं उनको एहराम अच्छी तरतीब से बन दूंगा, तो उसमें आप लोगों के लिए बड़ी सहूलत और बड़ी आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी।
हम लोग हज बदल कर लेंगे, तो वालिद साहब की तरफ से कर लेंगे, तो वो नियत के अंदर देना पड़ेगा।
हज बदल जो आप कर रहे हैं, तो वालिद साहब ने वसीयत की थी,
वसीयत की थी,
पैसे भी आपके ही है, तो आप जब नियत बांधे तो उस वक्त ये नियत कर ले कि अल्लाह ताला मेरी इस हज का सवाब पूरे पूरा मेरे अब्बा जान को पहुंचा दीजिए, उनकी नियत कर लीजिए। फिर जितने भी आमाल आप करेंगे, सारे आमाल का सवाब उनको इंशाल्लाह पहुंचता रहेगा। हाँ, कुर्बानी का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो रहा है, तो 700 रियाल उसके नक्की किए हैं। जिनकी भी कुर्बानी करवानी हो वो लोग इम्तियाज़ भाई को नाम लिख करके पैसे जमा करवा देवे। इंशाल्लाह मैं खुद जाऊंगा कुर्बानी के अंदर और नज़रों के सामने इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। सही कुर्बानी हो ये हमारी पूरी कोशिश और फिकर रहती है। अल्लाह ताला सही कुर्बानी हम सब के लिए अपने करम और फजल से आसान फरमा। देखिए, एक तो यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं ये हैं दमे शुक्र, कि अल्लाह ताला ने एक सफ़र के अंदर हमको उम्रा और हज दो नेमत अता फरमाई, उसके शुक्र के तौर पर हम लोग यहाँ जानवर की कुर्बानी देंगे। ये दमे शुक्र कहलाता है। हर साल रूटीन के मुताबिक जो हम लोग कुर्बानी करते हैं वो अलग है, वो तो अपने वतन के अंदर वहाँ भी हो जाएगी वो कुर्बानी, वो कुर्बानी यहाँ करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो कुर्बानी भी कोई यहाँ करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। और कुर्बानी एक से ज़्यादा अल्लाह ने जिसको जितनी कैपेसिटी दी हो इतना करो। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से 100 ऊँट की कुर्बानी की थी। 100 ऊँट मीनिंग 700 कुर्बानी की थी, इसीलिए कि एक ऊँट में 7 हिस्से होते हैं। और 700 कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर की थी। 100 ऊँट जब वहाँ साथ में लाए गए तो आता है कि हर ऊँट सामने आ रहा था कि अल्लाह के नबी मेरे गर्दन के ऊपर अपने मुबारक हाथ से छुरी चलावे। ऊँट खुद गर्दन सामने करके आ रहे थे। तो 63 यानी 63 ऊँट की कुर्बानी यानी नहर हुजूर ने खुद अपने मुबारक हाथ से किए, चूँकि उम्र मुबारक 63 साल हुई। फिर बाकी जो कुर्बानी रह गई वो हज़रत अली को कहा कि तुम मेरे बाकी जानवर की कुर्बानी कर डालो। तो हदीस भी है कि हज वही बेहतरीन हज है जिसमें लब्बे खूब पड़े और खूब कुर्बानी का खून बहावे, वो हज क्वालिटी हज है, बेहतरीन हज है, कीमती हज है। इसीलिए मैंने आपको एक टारगेट दिया है कि कम से कम 300 मरतबा लब्बे तो हर हाजी पढ़ ले, कम से कम दर्जे के अंदर 300 मरतबा लब्बे। और कुर्बानी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितनी हो सके इतनी ज़्यादा करें। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए।